35 नंबर के रजिस्टर में 21492 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। रात गिराही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात भर तो मंजिल चलते रहे, मंजिल बिल्कुल नजदीक आ गई, टाइम बिल्कुल नजदीक आया तो मंजिल छोड़ दी, हिम्मत हार गए। ऐसे नहीं करना। वास्तव में ये हुई अब योग की बात, क्योंकि अभी रात है। रात कहा जाता है कलयुग को और दिन कहा जाता है सत्ययुग को। कलयुग और सत्ययुग, सत्य के मुकाबले फ्रंट में क्या खड़ा हुआ है? झूठ युग। तो अभी झूठ युग है या सत्य युग है? अभी भी झूठ युग है। थोड़ा समय है, थक नहीं जाना। सुबह की मंजिल आई कि आई, सतगुरु की सवेरा आया कि आया, तुम अभी कलयुग रूपी रात से सतयुग दिन में जाते हो। इसलिए रात को भूल, दिन को याद करो, क्योंकि दिन में सूझ रहा होता है, ठोकरें नहीं खानी पड़ती, और रात में अज्ञान का अंधेरा आंखों में आ जाता है। अपनी अज्ञानता से ही ठोकरें खाते हैं। नर्क से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर ये नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि है आत्मा में। आत्मा अब जान गई है कि बाबा आया हुआ है रात से दिन में ले जाने के लिए। बाप कहते हैं हे आत्माओ, तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर के फिर स्वर्ग में आना। ऐसे नहीं पहले सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे, सुख की दुनिया में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति आती है मुक्ति के बाद। जैसे एक हाथ जल रहा हो और एक हाथ में कोई रसगुल्ला दे रहा हो, तो पहले क्या होगा? जलता हुआ हाथ उठाएंगे या रसगुल्ला ले लेंगे? पहले छुटकारा पाएंगे दुख से, तो ये जरूरी है क्या? पहले दुखों से छुटकारा पाना, माना मुक्त हो जाना। तीखा बुखार चढ़ा हुआ है, शरीर दर्द कर रहा है, तो अच्छे अच्छे भोजन खिलाना चाहे तो नहीं, पहले छुटकारा चाहिए प्राण से। तो ऐसे ही है, कोई सीधा सीधा सुख में नहीं जा सकता। पहले से कलयुगी झूठ की दुनिया से छुटकारा मिले, पहले घर के और पीछे राजधानी, पहले शांति धाम की योगी हो। शांति चाहिए पहले, फिर चाहिए सुख। अब मृत्युलोक अर्थात रात पूरी होनी, अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार को हमको योग सिखाते हैं। कौन? निराकार। निराकार मानो जिनका कोई आकार नहीं, बिंदु है, सूक्ष्म बिंदु, उसको निराकार कहेंगे। सही, निराकार माना निराकारी स्टेज। क्योंकि जैसे से योग लगाएंगे वैसे हम भी बन जाएंगे। अगर सिर्फ बिंदु से योग लगाएंगे तो हम भी क्या बनेंगे? सिर्फ बिंदु बन जाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ बिंदु बनने का है
यह शरीर में रहते सुख भोगने का भी है। जीवन मुक्ति का ही लक्ष्य है या सिर्फ मुक्त आत्मा का लक्ष्य है? जीवन मुक्ति का भी लक्ष्य है। तो निराकार से योग लगाने का अर्थ ये नहीं है कि हमको सिर्फ बिंदु रूप में टिक जाना है, नहीं। आत्मा बिंदु की भी प्रवृत्ति है, किसके साथ? शरीर के साथ। शरीर के साथ ही सुख दुख भोगा जाता है। तो ईश्वर हमको योग सिखाते हैं निराकारी स्टेज में रहकर। हमको भी कहते हैं तुम भी ऐसी स्टेज धारण करो, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। मनुष्य जो भी योग सिखाएंगे तो रंग सिखाएंगे, वो तो दुर्गति की तरफ ही ले जाएंगे। सदगति और दुर्गति, शुरुआत कहां से होती है? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति और दुर्गति शुरुआत कैसे होती है? मन बुद्धि रूपी आत्मा जब मनन चिंतन मंथन में टिक रही है तो समझो सदगति की ओर है। अगर देह और देह के पदार्थों में, देह के संबंधियों में बुद्धि योग रमता है तो समझो दुर्गति। ये हुई सूक्ष्म सदगति और दुर्गति की बात। बाद में होगी स्थूल रूप में सदगति और दुर्गति। दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है, फिर स्थूल में संपन्न होता है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, इसलिए उनको आसुरी योग कहा जाता है। और ये है ईश्वरीय योग, जिसे तुम सदगति को पाते हो। सत माना सच्ची। कैसी गति? सदगति। एक है गति और एक है सदगति। सिर्फ मुक्ति को पाना ये सतगति नहीं है, सदगति नहीं है, लेकिन मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति में भी आना, ये है सदगति। बाकी वो हो गई झूठी गति। क्यों? कि जो आत्माएं सिर्फ मुक्ति धाम में जाएंगी, दुख दर्दों से मुक्त स्टेज का अनुभव करेंगी लेकिन स्वर्ग के सुखों का अनुभव नहीं करेंगी, वो परमात्मा बाप की जो असली रचना है स्वर्ग, उसमें नहीं जा सकेगी। वो द्वापर युग से सृष्टि पर आएंगी। तो आसुरी योग तो बहुत प्रकार के, जो असुर सिखाते, ये है ईश्वरीय योग। ये है रूहानी और वो है सब जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वो तो मनुष्य जैसे खुद बैठे हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहां तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में तो कायदे से बैठना होता है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी योग लग सकता है। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिससे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। कौन? आर्टिस्ट। जानते हैं ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं। ये क्या बात है? अगर निराकार बाबा बिंदु को कहे जो इन आंखों से देखने में नहीं आता तो उसका आर्टिस्ट चित्र कैसे बनाएंगे? और वो निराकारी धाम का वासी है शिव बाबा। एक तरफ मुरली में कहते हैं कि आप साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाए, और दूसरी तरफ बताई दिया कि शिव बाबा परम धाम का वासी है, निराकारी दुनिया का वासी है। तो दो बातें हो गई। लेकिन नहीं, ये भी बोला कि तुम बच्चे परम धाम को इसी सृष्टि पर उतार लेंगे, ऐसी तुम्हारी स्टेज इसी दुनिया में बन जानी है, निराकारी स्टेज। जिसमें शांति ही शांति लगी पड़ी होगी, निसंकल्प स्टेज होगी, साथ में बाप भी होगा, निराकारी स्टेज में होगा, परम धाम की वो स्टेज यही अनुभव करनी है। मुक्ति और मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति की स्टेज भी यही अनुभव करनी है। हम भी वहां परम धाम के रहवासी हैं, हम आत्माओं को जाना है, ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना ही रंग है कि मुझे योग कराओ। योग शब्द ही नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? याद, जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा बाप को याद करता है, तो कोई कहता है कि मुझे याद सिखाओ, स्वतः ही योग लग जाता है। अगर कहता है कोई कि मुझे याद सिखाओ, तो आर्टिफिशियल बात हो जाती है। जहां लगन लगी होती है बुद्धि की, लगाव लगा होता है, वो तो स्वतः ही याद आता है। लगन और लगाव को ही योग कहा जाता है। तो बुद्धू ऐसे कहेंगे कि हमें योग सिखाओ या योग कराओ, बच्चे लौकिक बाप को खास बैठ करके याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते नहीं है। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पारलौकिक बाप क्यों तुमको भूल जाता है? बुद्धियोग क्यों टूट पड़ता है? क्यों का जवाब दो है? नहीं, क्योंकि बाप को बिंदु समझ लिया है, इसलिए खींच खींच करके याद करते हैं। बार बार बुद्धियों को टूट पड़ता है, बाप की सही पहचान है नहीं। मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है, अंदर से लगन लगी हुई हो। आत्मा जानती है बाबा को याद करना है, अगर खास बैठने की टेव पड़ जाती है तो योग सिद्ध नहीं हो सकता है। ये ईश्वरी योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखलाए रहे हैं, ईश्वर के सिवाय और कोई ये योग नहीं सिखला सकता, उसको योगेश्वर कहते हैं। इसको ईश्वर को, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझे बाप को याद करो, ऐसे नहीं जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तो मजा आता है। उनका योग कब स्थायी नहीं रह सकेगा, किनका? जो कहते हैं ये दादी हमको योग सिखाएं, योग कराएं, समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है, तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? ये तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखलाते हैं वो रंग है। योगी कोई भी इस दुनिया में नहीं है, ये तो किसको भी याद करो तो वो भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है उनसे योग लग जाता है, किसकी याद आती है? आम की याद आती है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वो भी याद आएगी, तो उनसे भी योग लग गया ना। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, देह के जो भी पदार्थ हैं, उन सब से बुद्धि को तोड़ना है, उन सब को भूल जाओ, एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विकर्माजीत तो बन जाएंगे। बाप ही आकर के सदगति का रास्ता बताते हैं, आकर के। बाप के बगैर कोई भी सदगति दे ही नहीं सकता, रास्ता भी आकर के खुद बताते हैं और सदगति भी आकर के खुद करते हैं। उनके सिवाय कोई मनुष्य मात्र सदगति नहीं कर सकता, मन बुद्धि रूपी आत्मा कोई भी सदगति नहीं हो सकती, मनन चिंतन मंथन नहीं चल सकता। आत्मा सदगति की ओर रुझान नहीं कर सकती। परमात्मा बाप से ही ये सूक्ष्म वर्षा मिलता है मनन चिंतन मंथन का, आत्मा को माने ज्ञान का असली वर्षा मिलता है। और बाप खुद सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और सदगति भी करते हैं, बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को, मुक्ति धाम जहां हम आत्माएं रहती हैं वो घर है। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है मनुष्य की मत। निराकार बाप आकर के सदगति करते हैं, आकर के अगर निराकार शब्द को सिर्फ बिंदु से जोड़ दिया जाए कि बिंदु ही निराकार है, तो आकर के क्या मतलब हुआ? कैसे पहचानेंगे बिंदु कौन सा है? बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब एक जैसी, तू तो पशु पक्षी पतंग उनकी भी आत्मा है बिंदु, तो कैसे पता चलेगा कि आया हुआ है? जरूर किसी तन में आते हैं, शिक्षा भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं और सदगति भी करते हैं। प्रैक्टिकल में अनुभव होती है, शरीर के द्वारा अनुभव होती है गति और सदगति की स्टेज। आधा कल्प हम सदगति में रहते, वहां भगवान से मिलने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की दर दर भटकने की दरकार नहीं रहती। जब रावण राज्य शुरू होता है तो दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरू होना है, तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ करके शिवालय में जाएंगे। कहां से कहां जाएंगे? वैश्यालय से शिवालय में जाएंगे। सत्युग है बेहद का शिवालय, इस समय है वैश्यालय। ये बातें याद करनी पड़ती कि इस समय ये सारी दुनिया वैश्यालय है, वैश्याओं का घर है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी है ही नहीं, वो भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो? तो कहते हैं हम दो वचन सुनेंगे। अब दो वचन तो बहुत नामी ग्रामी है। कौन से दो वचन? जो गीता में भी नामी ग्रामी है, मन मना भव और मध्याजी भव। पहले मन मना भव क्यों, बाद में मध्याजी भव क्यों? मन मना भव का अर्थ क्या? मत मना भव, मत मना मेरे, मना माने मन में, भव माना समाजा, अर्थात मेरे मन के संकल्पों में समाजा। दूसरा कोई संकल्प तो मत उठा, जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प, संकल्प मात्र भी कोई विराग विरोधाभास पैदा न हो, वाचा और करणा में कोई विरोध पैदा करना वो तो योग है ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प में भी कोई विरोध पैदा न हो। किसी को किसी से सच्चा प्यार हो जाता है तो उसे जो अच्छा लगता है वो प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है, तो संकल्प मात्र तक भी समानता हो, पैरेलल वृत्ति हो, जिसकी ऐसी स्टेज बनेगी वही मध्याजी भव भी बन सकेगा बाद में। मध्याजी भव का मतलब क्या हुआ? मत माना मेरे, याजी माना यजन करने वाला, कर्म करने वाला, भव मेरे लिए कर्म करने वाला भव। चाहे कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करे तो किसके लिए करे? कोई भी कर्मेंद्रियों से कोई कर्म किया है तो किसके लिए किया? बाप के अर्थ किया, बाप के कार्य में वो अर्पण किया। वाचा भी चलाई तो किस लिए चलाई? बाप के लिए चलाई, बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, बाप का कार्य सिद्ध हो जाए, बाप जो कराना चाहता है वो हो, तो मध्याजी भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, क्योंकि बाप आया ही हुआ स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। ये बाप का लक्ष्य है कि मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा दे करके जाऊंगा इस नरक की दुनिया में, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा दे के जाऊंगा। चारों तरफ दुनिया में हाहाकार हो रही होगी, मारकाट हो रही होगी, लेकिन तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम्हारी स्टेज कैसी होगी, सुखमयी होगी या दुखमयी होगी? ऐसे तो नहीं मारकाट को देख करके खुद परेशान हो जाओ, नहीं, इन दो वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। कौन से दो वचन? मन मना भव, मध्याजी भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे। किसे याद करो? बाकी और निरोगी बनने का सवाल पैदा होता है, है? जैसे कोई याद करेंगे वैसे बनेंगे। अगर आत्मा कहती है कि मैं बाप को याद करके निरोगी बनूं, तो बिंदु किस स्टेज में होना चाहिए? शरीर के साथ होना चाहिए या शरीर से परे होना चाहिए? शरीर के साथ स्वयं होगा तो उसको जैसे को हम याद करेंगे वैसे हम भी बनेंगे। शरीर सहित हमको निरोगी बनना है तो जरूर बाप भी शरीर के सहित पहले निरोगी बने। तो कौन सा बाप? सुप्रीम सोल की तो बात ही नहीं, वो तो रोगी और निरोगी बनता ही नहीं, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। आना तो हमको है तो फॉलो भी किसको करना है? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला बाप है, माने मनुष्य आत्मा का पिता है, प्रजापिता, उसकी जब ऐसी स्टेज बने, कैसी स्टेज? शरीर में रहते हुए भी सुख अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे। मानो कोई ब्रह्मा के स्वरूप में स्वयं को याद करता है तो ब्रह्मा की जो गति होगी वही तो उसकी गति होगी कि दूसरी गति हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो निरोगी बन जाएंगे और चक्र को याद करने से धनवान बनेंगे। दो वचन से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बुद्धि अलफ और बे, ये दो वचन हैं। कौन है अलफ और कौन है बे? अलफ माना अल्लाह, अल्लाह माना, अल्लाह माना ऊंचे से ऊंचा, आला दर्जे का माना बहुत ऊंचा, जिससे ऊंचा कोई हो नहीं सकता। तो ऊंच और नीच की बात कहां परम धाम की है या इस साकार सृष्टि की है? साकार सृष्टि की है ना, साकार सृष्टि पर ऊंची ऊंच होते हैं और नीचते नीच भी होते हैं। तो अलफ अल्लाह किसको कहें? बिंदु तो न ऊंच बनता है सुप्रीम सोल और न नीच बनता है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है वो ऊंचते ऊंच भी बनता है और नीचते नीच भी बनता है। अभी कौन सा लक्ष्य? अभी ऊंचते ऊंच बनने का लक्ष्य है। तो उस अलग को याद करो, उस अलग की भी सिद्धि पहचान कैसे हुई? जब उसमें किसने प्रवेश किया? सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया तो उसकी भी पहचान होती। तो उस साकार और निराकार के मेल अलफ माना अल्लाह, जो आला दर्जे में रहने वाला है, उसको याद करो। उसकी कभी स्टेज ऊपर नीचे होती नहीं है। और बच्चों की स्टेज ऊपर नीचे होती है, और बच्चों को निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता है, लेकिन उस आला दर्जे की कमाई करने वाले को कभी निश्चय अनिश्चय का चक्कर नहीं चलता। तो उसको याद करो, एक तो अलग को याद करो और दूसरा दे को याद करो। बाप का जो बच्चा है, जो ऊंचे से ऊंची बादशाही लेने वाला है सत्यु की, उसको याद करो। एक तरफ कहते हैं घर को याद करो, दूसरी कविता कहते हैं स्वर्ग को याद करो, फिर कहते हैं बाप को याद करो, फिर कहते हैं अलफ बे को याद करो, बाप दादा को याद करो। तो जो अलफ है और जो बे है वो वास्तव में श्रेष्ठ है। बे हुई रचना और वो हुआ रचयिता। अलफ अल्लाह, अलफ खड़े डंडे को कहा जाता है और बे पड़े डंडे को कहा जाता है। बाबा है अलफ, बे बच्चे को भी कह सकते हैं, बच्चा मान चाइल्ड बेबी। इसलिए ब्रह्मा को शिव बाबा क्या कहते हैं, बेबी। इतनी वाणियां चलाई लेकिन बेबी बुद्धि होने के कारण उनके गुह्यार्थ को ब्रह्मा की सोल नहीं समझ सकी। क्यों नहीं समझ सकी? क्योंकि क्लीन क्लीन बुद्धि, कोरा कागज, बुद्धि चलाने वाली आत्मा नहीं थी, वो भावना प्रधान आत्मा थी। तो अब अलग अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी हो जाएगी। ऊंचते ऊंचे बाप को याद करोगे तो बेबादशाह तुम्हारा हो जाएगा। कोई को बादशाही मिलती है, कोई प्रजा में जाती है। तो बच्चों को पोता मिल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। ये श्रीमत बाप ही देते हैं, आत्मा को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास भी बहुत था, जब देखा कि अलग से बादशाही मिलती है तो धन का क्या करेंगे? क्यों ना सब कुछ अलग के हवाले कर दें और बादशाही ले लेंगे? इसके हवाले कर दें, अलग के हवाले कर दें। अलग माने क्या? बिंदु के हवाले कर दें। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया था, अलग को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। क्या अर्थ हुआ इसका? अलग माना आला दर्जे का पुरुषार्थ करने वाला, आदमी भी था। अलग को मिला अल्लाह माना उसमें किसने प्रवेश किया? पहले पहले शिव बाप ने प्रवेश किया। अलग को मिला अल्लाह और बे बादशाही सारी भागीदार को दे, माने यज्ञ का सारा कारोबार किसको सौंप दिया है? भागीदार को सौंप दिया। वो समझते हैं कि ब्रह्मा तो मालिक था और जो दुकान में उनका सहयोगी था वो भागीदार था। अरे भागीदार तो दोनों ही होते हैं। कोई दुकान में दो पार्टनर होते हैं तो एक ही भागीदार होता है, एक मालिक होता है क्या? उनमें ये करार हुआ था कि तुम अपनी बुद्धि की पावर और शरीर की पावर सारी लगाओ और धन सारा ब्रह्मा बाबा का लगेगा। तो दोनों ने अपनी अपनी शक्ति लगाई ना दुकान में, दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर हुए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा वो मालिक हुआ और जो दूसरा व्यक्ति था दुकान में वो ही पार्टनर हुआ, वो ही भागीदार हुआ। नहीं, दोनों एक दूसरे के भागीदार। तो अलग को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। कब? सिंध हैदराबाद में।